आर्यांश के बदलाव और उसके एफर्ट्स को देखकर दीवा का मन बदल गया था और उसने दिल से आर्यांश की गलतियों को भुलाकर उसे माफ कर दिया था। पहले जब भी आर्यांश उसके लिए कुछ करता था तो उसके पीछे उसका स्वार्थ छिपा होता था, लेकिन अब वो बदल गया था। दीवा को बिना बताए वो बिना किसी स्वार्थ के उसकी परवाह करता था और दीवा का दिल जीतने के लिए इतना काफी था। हालांकि दीवा ने तो आर्यांश को माफ़ कर दिया था, लेकिन आर्यांश अभी तक खुद को माफ़ नहीं कर पाया था। उसे यही लगता था कि अगर वो दीवा की ज़िंदगी में दोबारा गया तो फिर से उसे हर्ट करेगा। दीवा ने ये ठान लिया था कि वो आर्यांश को उसकी इस इनसिक्योरिटी से बाहर निकाल कर रहेगी। इस वक्त वो दोनों सुमन माँ के साथ उनके हॉस्पिटल रूम में थे, जहाँ दीवा जानबूझकर आर्यांश को तंग कर रही थी। पहले दीवा ने आर्यांश के खाने में कमी निकालने की कोशिश की, तो फिर बाद में वो सुमन की तरफ देखकर मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, अच्छा सुमन माँ, मिस्टर कपूर के लिए एडजस्ट करना बहुत मुश्किल रहा होगा ना, इन्होंने खाना बनाना सीखा और घर के छोटे मोटे काम भी, ये तो अपने कपड़े भी जल्दी से रिपीट नहीं करते थे, सोचो अब वही पहने हुए कपड़े इन्हें खुद को धोने पड़ते हैं, कैसे सीखा और कितना टाइम लगा। मेरी लाइफ जर्नी में तुम कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट नहीं ले रही, आर्यांश ने आँखें घुमाकर कहा। हाँ, क्योंकि मुझे तुम पर मुझे एक ऐसे इंसान पर डॉक्यूमेंट्री लिखनी है जो अचानक से पूरा बदल गया, दीवा ने काफ़ी सीरियस अंदाज में जवाब दिया। आर्यांश ने दीवा की तरफ घूर कर देखा तो उसने थूक निकला। उसकी निगाहें साफ जाहिर कर रही थीं कि वो दीवा की बातों से बुरी तरह चिढ़ रहा है। वैसे कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती हैं, दीवा जल्दी से बोली, पहले भी आर्यांश उसे इस तरह गुस्से में देखता था तो वो घबरा जाती थी। एक पल के लिए उन दोनों की नज़रें टकरा गई थी। दीवा की आंखों में घबराहट देखकर आर्यांश ने तुरंत अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली थीं। आर्यांश उसे इस तरह डराना नहीं चाहता था। वो जल्दी से अपनी जगह से उठा और बाहर जाते हुए बोला, तुम सुमन माँ के पास रुको, मैं बाहर हूँ, कुछ काम हो तो कॉल कर देना। आर्यांश ने उसका जवाब तक नहीं सुना और बाहर चला गया था। उसके जाते ही दीवा के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई थी। फिर उसने सुमन की तरफ देखा और उनके पास जाकर आर्यांश की जगह पर बैठ गई थी। वो कुछ ज्यादा ही जल्दी चिढ़ जाते हैं, आप उन्हें जानती हैं ना, सुमन ने दीवा को समझाया। हाँ, लेकिन मैंने नोटिस किया कि अब वो पहले की तरह गुस्सा नहीं करता है, खुद को शांत रखने की कोशिश करता है ताकि उसकी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो, दीवा ने गहरी सांस लेकर कहा। सुमन ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिला दिया था। कुछ पल रुककर उसने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या आपने मिस्टर कपूर को माफ़ कर दिया है? हाँ, अब उस पर गुस्सा नहीं आता और ना ही उसे देखकर नफरत महसूस होती है। मैं आर्यांश को कभी इस हाल में नहीं देखना चाहती थी, मैंने उसे हमेशा दूसरों की लाइफ कंट्रोल करते हुए ही देखा है, एक ऐसे इंसान के तौर पर जो कभी किसी के सामने नहीं झुकता था। दीवा ने आर्यांश के अंदर आए बदलावों को बहुत अच्छे से नोटिस किया था। हाँ, अब वो बस अपने काम से मतलब रखते हैं और ज़्यादातर खुद को व्यस्त रखना पसंद करते हैं, सुमन ने बताया। आर्यांश की इस आदत के बारे में दीवा पहले भी जानती थी। जब वो दोनों साथ रहते थे तब दीवा से किसी बात पर झगड़ा हो जाने या फिर परेशान होने पर आर्यांश खुद को काम में डुबो देता था ताकि उसे आसपास हो रही चीज़ों से फ़र्क ही ना पड़े। आर्यांश और अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में सोचते हुए दीवा के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आई। उसने सुमन की तरफ देखकर पूछा, आर्यांश ने मुझे कभी नहीं बताया, लेकिन मुझे सच में जानना है कि जब आप लोग यहाँ आए थे तब आर्यांश की लाइफ कैसे बदली? क्या उसने खुद को इतनी आसानी से संभाल लिया जितना मज़बूत वो आज खुद को दिखाने की कोशिश करता है? दीवा उत्सुक निगाहों से सुमन की तरफ देख रही थी ताकि वो उसे आर्यांश के पिछले सालों के बारे में बताएं, लेकिन सुमन बिल्कुल चुप हो गई थी, उल्टा उसके चेहरे पर उदासी के भाव दिखाई दे रहे थे। दीवा को कुछ भी बताने से पहले सुमन के दिमाग में पुराने सालों की यादें ताज़ा होने लगीं, खासकर उस वक्त की जब आर्यांश के साथ वो दोनों उसके घर पर आए थे। सुमन माँ को इस तरह परेशान देखकर दीवा ने उनका हाथ पकड़ा और सहलाते हुए कहा, इट्स ओके, अगर आप मुझे नहीं बताना चाहती हैं प्लीज़ खुद को स्ट्रेस मत दीजिए, यह आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, मैं आर्यांश से पूछ लूँगी। और आपको क्या लगता है कि वो आपको कुछ बताने वाले हैं? वो कभी नहीं बताएंगे कि उनके लिए सब कुछ कितना मुश्किल रहा है, सुमन बोली। उसने गहरी सांस ली और हल्के से सिर हिलाकर कहा, मेरा इरादा आपको परेशान करने का नहीं है, लेकिन आप जानना चाहती ही हैं तो आपको खुद को मजबूत करना होगा। मिस्टर कपूर के लिए आसान नहीं था आपको छोड़कर दूर आना और उसके ऊपर अपने बच्चे को खोने का दर्द बर्दाश्त करना। दीवा खुद उन लम्हों के बारे में याद नहीं करना चाहती थी, लेकिन साथ ही वो ये भी जानना चाहती थी कि आर्यांश के ये 3 साल कैसे बीते थे। उसने हल्के से हाँ में सिर हिला दिया था। इसी के साथ सुमन उसे पुरानी बातों के बारे में बताने लगी। वो धीमी आवाज़ में बोली, मुंबई से निकले थे तब सोचा नहीं था कि कहाँ जाएंगे, बस इतना पता था कि मुंबई से दूर जाना है। मेरी बहुत दिनों से अपने पुराने घर में आने की इच्छा थी, इसलिए मिस्टर कपूर मुझे यहाँ ले आए थे और ये जगह काफ़ी दूर थी। मिस्टर कपूर के लिए इतने ठंडे मौसम में रहना मुश्किल था, पर धीरे धीरे उन्हें आदत होने लगी और उन्होंने यहीं रहने का सोचा। मैं अपनी तरफ से उनका ख्याल रखने की कोशिश करती, हर वक्त उनके साथ रहना चाहती ताकि वो अकेला महसूस ना करें, लेकिन वो तो ठीक से बात तक नहीं करते थे। मैंने बहुत बार उनको रात को ठंड में बाहर अकेले उदास हालत में बैठे हुए देखा था। ये उनके मुंबई से आने के लगभग एक हफ्ते बाद की बात है, जब एक रात आर्यांश ठंड में बाहर बैठा था। मौसम ज्यादा ठंडा होने की वजह से बर्फबारी हो रही थी, लेकिन फिर भी आर्यांश अपनी जगह पर ऐसे बैठा था जैसे उसे मौसम और इस तूफान के बारे में कुछ एहसास ही ना हो। सुमन ने उसे इस तरह स्नोफॉल में बाहर देखा तो वो जल्दी से उसके पास गई। अंदर चलिए मिस्टर कपूर, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, सुमन बोली। तो आर्यांश ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में देखते ही सुमन कुछ कदम पीछे हट गई थी। उसके दिल का दर्द उसकी आंखों में झलक रहा था, पर वो रोना नहीं चाहता था और इसी वजह से उसकी आंखें इस वक्त बेहद वाल थीं, जैसे लग रहा हो कि उसकी आंखों में खून उतर आया हो। आर्यांश को इस कदर दुखी और परेशान देखकर सुमन की पलकें भीगने लगी थीं। वो भी अंदर जाने के बजाय अब आर्यांश के पास उसके बगल में बैठ गई थी। मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ, मैंने भी अपने बच्चे को खोया है। आपको इस दर्द से बाहर आना होगा मिस्टर कपूर, वरना ये दर्द अंदर ही अंदर आपको खोखला कर देगा, सुमन ने शांत आवाज में कहा। मैं ठीक हूँ, आर्यांश ने जवाब में इतना ही कहा। नहीं, आप ठीक नहीं हैं, और आप कब तक इस दर्द को अपने दिल में दबाकर रखना चाहते हैं? मैंने उस दिन आपको समझाया था कि अगर आप रोना चाहते हैं तो रो सकते हैं, आपने बहुत कुछ खोया है, इसका दुख मनाना बुरा नहीं है, सुमन ने उसे समझाते हुए कहा। वो जानती थी कि अगर आर्यांश इसी तरह अपने दर्द को अपने सीने में दबाकर रखेगा तो वो अंदर ही अंदर घुटने लगेगा और ना जाने इसका क्या नतीजा निकल कर आएगा। मैंने सब अपने हाथों से बर्बाद कर दिया, मैंने दीवा को अब तक की सबसे बड़ी तकलीफ दी है, मैं इतना बुरा कैसे हो सकता हूँ कि अपने ही बच्चे को अपने हाथों से मार डाला, आर्यांश ने कांपती आवाज में कहा, और इसी के साथ उसकी आंखों से आंसू का कतरा बह गया था।
आर्यांश की आंखों में आंसू देखकर सुमन को कुछ राहत महसूस हुई। उन्होंने आर्यांश का सर अपने कंधे पर रख लिया था। उस वक्त उसने आर्यांश को पहली बार रोते हुए देखा था। उस रात वो जी भर कर रोया था और उसके बाद सुमन ने काफी बार उसे अपना दिल हल्का करने के लिए इसी तरह अकेले में छुपकर रोते हुए देखा था। वो जानती थी कि उसके दिल का बोझ बहुत बड़ा है, ये इतनी आसानी से नहीं उतरने वाला है। जैसे ही सुमन ने दीवा को ये सब बताया तो उसकी मुट्ठियां कस गई थीं। दीवा की पलकों में भी नमी उतर आई थी, लेकिन वो खुद को मजबूत रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो आज भी इन सब से बाहर नहीं निकला है सुमन माँ, मुझे पता है, वो सब भूलना और सहन कर पाना बहुत मुश्किल था, और मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है, खुद मैं उन सब से आसानी से बाहर नहीं निकल आई थी, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने मूव ऑन किया, और इसकी वजह आर्यांश था, उसने मेरी जिंदगी में शिव को भेजा था ताकि मैं जल्द से जल्द सब कुछ भूल जाऊं, और यही हुआ, लेकिन उसका क्या, वो आज भी इस तकलीफ में जी रहा है और उसे इस तरह देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है, दीवा ने भरी आवाज में कहा। तो आपको पता चल गया कि आज भी वो उन सब के बोझ के तले दबे हुए हैं, सुमन ने मायूसी से कहा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन आप जानते हैं वो जिद्दी हैं और उनकी जिद के आगे आकर मैं भी हार जाती थी। खुद को तकलीफ देने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी और उन्हें लगता है कि उन्होंने जो किया उसके बाद वो इसी लायक है। नहीं, वो इस लायक बिल्कुल नहीं है, और मैं उसे ये बात समझाऊंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आर्यांश को उसके गिल्ड से बाहर निकाल कर रहूंगी, दीवा ने सुमन के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे आश्वासन दिया। दीवा को यही लग रहा था कि 3 साल पहले जो भी हुआ था उससे दीवा बाहर निकल गई थी, लेकिन आर्यांश सच में वहीं पर अटका हुआ था। अगर दीवा उसे माफ नहीं भी करती तब भी वो ये कभी नहीं चाहती थी कि आर्यांश आज भी उस तकलीफ को महसूस करे। अच्छा सुमन माँ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, आप रेस्ट कीजिए, मैं नर्स को छोड़कर जा रही हूँ, दीवा वहां से उठते हुए बोली। आप मिस्टर कपूर से बात करने जा रही हैं, सुमन ने पूछा, जिस पर दीवा ने हाँ में सिर हिला दिया था। उम्मीद है आपका आना उनकी जिंदगी में एक नया सवेरा लेकर आएगा, मिस गोयनका, अगर आपने उन्हें माफ कर दिया है तो क्या प्लीज आप उनकी लाइफ में वापस आएंगी? मैं उनकी गलतियों पर पर्दा नहीं डाल रही हूँ, उन्होंने गलती की है, वो खुद भी इस बात को मानते हैं, पर वो आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं, सुमन ने आर्यांश का पक्ष रखते हुए कहा। मुझे पता है, दीवा ने मुस्कुराकर जवाब दिया और सुमन को वहीं नर्स के पास छोड़कर बाहर आ गई थी। आर्यांश ने उसे बाहर ही इधर उधर होने का कहा था, लेकिन दीवा को वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। दीवा ने डॉक्टर से भी पूछा, पर उन्होंने आर्यांश को किसी काम से बाहर नहीं भेजा था। मुझे कहा था कि बाहर ही हूँ, अब इतनी देर में कहाँ चला गया, दीवा ने हल्के परेशान स्वर में कहा, और आर्यांश को कॉल लगाने के लिए अपना मोबाइल निकाला ही था कि बाहर खड़े हुए उसकी नज़र हॉस्पिटल के गार्डन एरिया की तरफ गई। आर्यांश वहां एक पेशेंट की हेल्प कर रहा था जो कि मुश्किल से 6-7 साल का बच्चा था। आर्यांश को देखकर दीवा ने राहत की सांस ली और तुरंत अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए थे। दीवा को अचानक अपने सामने इस तरह उतरे हुए चेहरे के साथ देखकर आर्यांश ने सिर हिलाकर कहा, तो तुमने अपनी जिद पूरी कर ही ली और उन्होंने तुम्हें सब बता दिया, तरस आ रहा है मुझ पर? दीवा को लगा था कि वो आर्यांश से बात करके उसे संभाल लेगी, लेकिन उसके इस तरह कड़वाहट से बात करने पर वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी थी। दीवा को ये जितना आसान लग रहा था वो उसके लिए उतना ही मुश्किल साबित होने वाला था, खासकर आर्यांश के मामले में। क्या लगता है, दीवा इसे आराम से हैंडल कर पाएगी? क्योंकि आर्यांश चाहे कितना भी सुधर जाए, लेकिन कुछ मामलों में दीवा अभी भी उसके सामने कमजोर पड़ जाती है। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा, अगले पार्ट पर मिलते हैं।